नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेतावनी दी है कि सर क्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का करारा जवाब दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के विनिर्माण योजना को 1,15,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आत्मनिर्भर भारत को महत्वपूर्ण बताया। अमेरिकी आज शुल्क से उपजी परिस्थितिकी में स्वदेशी अपनाने पर बल दिया। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा का त्यौहार देश भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चेतावनी दी है कि सरक्रिक क्षेत्र में पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का ऐसा निर्णायक जवाब दिया जाएगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। श्री सिंह ने आज भुज में विजयदशमी के अवसर पर आयोजित सेनाओं के क्षमता अभ्यास में भाग लिया। रक्षा मंत्री ने सशस्त्र पूजन समारोह में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए केवल संकल्प ही पर्याप्त नहीं है।
ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने इस बात का अनुभव किया है और सत्य पूजा इस बात का प्रतीक है कि भारत सिर्फ शस्त्र की पूजा नहीं करता है बल्कि समय आने पर शस्त्रों का इस्तेमाल करना भी जानता है। आप हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाओं को ध्यान से देखिए, उनके एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र है, क्योंकि हमें वह संदेश देते हैं कि शास्त्रों की रक्षा शस्त्र से ही की जा सकती है। इसे शास्त्र और शस्त्र का संतुलन ही हमारी सभ्यता को जीवंत और अजेय बनाता है।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के विनिर्माण की योजना के अंतर्गत सरकार को 1,15,000 और 391 करोड़ की लागत के निवेश प्राप्त हुए हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत आवेदन की तिथि कल समाप्त हो गई। इस योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में बना विश्वास अब निवेश, रोजगार सृजन और उत्पादन में परिवर्तित हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने सर संचालक डॉ मोहन भागवत ने आज कहा है कि आत्मनिर्भर बनने और वैश्विक एकता के पक्षधर होने के नाते हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्भरता हमारी विवशता नहीं और हम अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने में सक्षम है। स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई विकल्प नहीं होता। डॉ. भागवत ने अमेरिकी आयात शुल्क के बीच उपजी परिस्थितिकी में स्वदेशी अपनाने पर भी बल दिया है। संघ प्रमुख आज सुबह नागपुर में रेशमबाग में RSS के शताब्दी वर्ष समारोह और विजयादशमी उत्सव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। डॉ. भागवत ने कहा है कि पहलगाम हमले के बाद की गई जवाबी कार्रवाई की अवधि के दौरान हमने देश के नेतृत्व की दृढ़ता, हमारे सशस्त्र बलों की वीरता और युद्ध तत्परता और समाज के दृढ़ संकल्प तथा एकता के उत्साहजनक दृश्य देखे हैं। सेवा और सुशासन के मंत्र को अपनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बदलाव और प्रगति लाने के लिए लगातार काम कर रही है। आज सेवा पर्व की विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने कैसे नॉर्थ ईस्ट को मुख्य धारा में शामिल किया और उसे भारतीय विकास का नया इंजन बनाया है। कभी दूरदराज का इलाका माने जाने वाला नॉर्थ ईस्ट इंडिया अब प्रगति, शांति और संभावनाओं का प्रतीक बन गया है। पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने समावेशी विकास के लिए एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इनमें नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र भी शामिल है, जिसमें अभूतपूर्व विकास किया गया है और अब ये देश की मुख्य धारा का हिस्सा बन गया है। 23 मार्च 2025 को नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्वोत्तर भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।
साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना बहुत जरूरी है और नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत का सबसे अहम अंग है। हमारे लिए ईस्ट का मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं है, हमारे लिए ईस्ट का मतलब है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म। पूर्वी भारत के लिए यही हमारी सरकार की नीति है।
नरेंद्र मोदी सरकार ने लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट में बदलने के बाद अब नॉर्थ ईस्ट के लिए एक्ट फास्ट और नॉर्थ ईस्ट को पहले प्राथमिकता की नीति अपनाई है। 2014-15 से नॉर्थ ईस्ट रीजन डेवलपमेंट मंत्रालय के लिए बजट आवंटन लगभग 2,333 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 5,900 करोड़ रुपए हो गया है, जो 2.5% की वृद्धि को दर्शाता है। मोदी सरकार नॉर्थ ईस्ट में औद्योगिक विकास के लिए उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम उन्नति 2024 भी लागू कर रही है। नॉर्थ ईस्ट रीजन विजन 2020 डॉक्यूमेंट इस क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है, ताकि इसे अन्य विकसित क्षेत्रों के बराबर लाया जा सके। इसके तहत विभिन्न मंत्रालयों ने कई पहल की है। भारत की मुख्य धारा से दूर रहने वाला नॉर्थ ईस्ट अब देश के विकास के प्रमुख केंद्रों में से एक बन रहा है। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राजधानी दिल्ली में राजघाट पर बापू की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति एसपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने आज सुबह महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। विश्वभर में भारतीय दूतावासों ने आज महात्मा गांधी की 156वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारतीय दूतावास शांति और अहिंसा के प्रति उनके वैश्विक संदेश का प्रसार कर रहे हैं। गांधी जयंती के अवसर पर पॉडकास्ट श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत पद्मश्री पुरस्कार विजेता स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता श्री वी पी अपुकुट्टन पोडुवल के साथ बातचीत प्रसारित की जाएगी। इसे आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि लाल बहादुर शास्त्री एक असाधारण राजनेता थे, जिनकी निष्ठा, विनम्रता और दृढ़ संकल्प के चुनौतीपूर्ण समय में भी देश को सशक्त बनाया है। विजयदशमी यानी दशहरा का पर्व आज आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन नवरात्रि अनुष्ठान और दुर्गा पूजा के समापन तथा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयदशमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। जीएसटी भारत उत्सव पिछले महीने की 22 तारीख से शुरू हुआ और इससे समाज के हर वर्ग को लाभ हो रहा है। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में नया अध्याय शुरू हुआ। इन सुधारों ने विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं में कर की दर में कटौती से लोगों को किफायती राहत दी है। कृषि, मशीनरी और उर्वरकों पर जीएसटी सुधारों के प्रभाव पर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने किसानों पर वित्तीय बोझ कम करने, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और आवश्यक कृषि उपकरणों को और अधिक किफायती बनाने के लिए जीएसटी में कटौती की है। स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, कटाई मशीनरी और छोटे डीजल इंजन जैसे कृषि उपकरणों पर जीएसटी को पहले के 12% कर स्लैब से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे जल बचत, सिंचाई को प्रोत्साहन मिलेगा, उत्पादकता बढ़ेगी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार जैव कीटनाशकों और कई सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जीएसटी 5% कर दिया गया है। इसके साथ ही अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे उर्वरकों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे उर्वरक सस्ते हो जाएंगे और किसान जैव कीटनाशकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे मिट्टी और फसल की गुणवत्ता में सुधार होगा। कर में कटौती से किसानों की लागत कम होगी और पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा मिलेगा। सस्ते उर्वरक और कृषि मशीनें उत्पादकता को बढ़ावा देंगी, जिससे भारतीय कृषि मजबूत और आत्मनिर्भर बनेगी। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
अहमदाबाद में 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में पहले दिन भारतीय तेज गेंदबाजों ने पहली पारी में वेस्टइंडीज की पूरी टीम को 162 रन पर समेटा। मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट झटके, बुमराह ने 3, कुलदीप यादव ने 2 और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 31वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 107 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने आज दक्षिणी छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की। कल तमिलनाडु, असम और मेघालय में भी तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 15 जिलों तवांग, पाके केसांग, कमले, लोअर सुबनसिरी, पापुमपारे, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लेपारादा, दिवांग वैली, लोअर दिवांग वैली, नामसाई, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आज लगातार दूसरे दिन हड़ताल के दौरान 3 पुलिसकर्मी मारे गए और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी JKJASC की हड़ताल के दौरान विरोधी समूहों ने भी एक साथ विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।